मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 19 फरवरी 2019 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मैं जिस विषय पर बात कर रहा था उसी विषय के सेकेंड पार्ट के रूप में आज मैं बात करना चाहूंगा। और दरअसल आज मैं बात इस इश्यू पर करने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करें कि हमारे विचारों में स्पष्टता दूसरों को जान पड़े। दरअसल होता यह है कि जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं तब हमें तो बहुत क्लियरली ये बात पता होती है कि हम सही बोल रहे हैं और हम सही लिख रहे हैं। मतलब हमें जरा सा भी ये नहीं लगता है कि हम कोई अस्पष्ट तरीके से अपनी बात किसी से कह रहे हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि हमारे दिमाग में तो वो सारा संदर्भ मौजूद है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि नहीं नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही सरल सी बात है, सीधी सीधी बात है और सीधे तरीके से हम सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, चाहे लिखकर पहुंचाएं या कहकर पहुंचाएं, और वह उसे समझ रहा होगा, भाषा वो जानता है और मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह होती है कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, क्या कहा, जहां उसका दिमाग जरा भी असंतुलित हुआ कि अरे अच्छा अच्छा वो क्या कहना चाह रहा था, अच्छा वो बस समझ लीजिए कि अब आप जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आपने लिखा है, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। लिखे हुए में कम से कम इतनी सुविधा तो होती है कि पढ़ने वाला थोड़ा सा रुके, पीछे जाए, समझने की कोशिश करे, हो सकता है कि चीजें स्पष्ट हो जाएं। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर लिखने में भी आपकी स्पष्टता नहीं है और पढ़ने वाले की कोई मजबूरी नहीं हुई कि वह उसे पढ़े ही, तो मान करके चलिए कि वह दोबारा पढ़ने की जहमत नहीं उठाता है, वह उसे छोड़ देगा और किनारे कर देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता क्यों है, आइए हम उसे थोड़े से भाषा के स्तर पर जानने और समझने की बहुत ही व्यावहारिक कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास जो मेल आते हैं, मैं चलिए उसी में से कुछ उदाहरण लेने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। दोस्तों, मेल इस तरह के आते हैं, देखिए कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, और इसके बाद आखिरी में लाइन आ जाती है, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करें, प्लीज गाइड मी, मेरा मार्गदर्शन करें, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें अस्पष्टता की क्या बात है। अस्पष्टता की बात है मित्रों, यही तो बात है कि हम समझ सकें कि अस्पष्टता की बात कहां है। जैसे मान लीजिए कि मैं ही, चलिए इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए कि मैं आपसे मेल, आपको मेल भेजता हूं कि आप, मैं आईएएस बनना चाहता हूं और आप मेरी मदद करें। बोलिए अब आप मेरी क्या मदद करेंगे, आपको कुछ स्पष्ट हुआ? ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई ये मदद चाह रहा है, लेकिन आईएएस की मदद क्या, कोई गड्ढे में गिरा हुआ हो और कहे कि मेरी मदद करें तो समझ में आ जाएगा कि यार इस गड्ढे में गिरा हुआ है तो इसकी एक ही मदद हो सकती है, इसको बाहर निकालो। कोई पानी प्यासा है और कह रहा है कि मेरी मदद करो तो आप उसे पानी पिला देंगे, ठीक है। कोई गिर गया है तो आप कहे मेरी मदद करो तो आप उसे उठा देंगे। कोई व्यक्ति सड़क पार करना चाह रहा है, वो ब्लाइंड है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो कह रहे कि मेरी मदद करो तो आप उसे सड़क पार करा देंगे, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही चीज है। लेकिन आईएएस के बारे में अगर आप कह रहे हैं कि मेरी मदद करो तो आप बताइए कि क्या मदद की जा सकती है, उसे किस तरह की मदद चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो सैकड़ों मदद के रूप है, तो कौन से मदद चाहिए। इसका मतलब है कि उनके अपने ही विचारों में यह स्पष्टता नहीं है कि दरअसल उसको कौन सी मदद चाहिए। अदरवाइज वो बहुत स्पष्ट रूप से लिखता कि मुझे किताबों के नाम बता दीजिए, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, गाइड कर दीजिए, मेरी ये बैकग्राउंड है, मैं बन सकता हूं नहीं बन सकता हूं, मुझे एडवाइस कर दीजिए, जो भी हो वो पिन पॉइंट तो करे कि मुझे यह मदद चाहिए। सीधी सी बात है कि वो एक खुला मैदान जैसा उसने छोड़ दिया है कि मेरी मदद कीजिए। इनफैक्ट सच बात यह है कि वो कोई मदद चाहता ही नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम कि उसको क्या मदद चाहिए। जैसे मित्रों, कई मेरे पास ऐसे मेल आते हैं कि सर वो जो पिछले सप्ताह आपका जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस था वो बहुत अच्छा था और उससे मुझे बहुत मदद मिली, और मुझे वह टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा था लेकिन मुझे अब वह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि आप जरा सा इस टॉपिक पर भी एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस बना दें। अब वो अपनी बात कह रहा है और सही तरीके से कह रहा है, लेकिन अस्पष्टता को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पिछले सप्ताह आपका जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आया था, आप सोच करके देखिए कि क्या मुझे याद वो रह सकता है कि पिछले सप्ताह किस विषय पर स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा गया था। आप सोचिए इस पर रहना चाहिए। आप कह सकते हैं कि सर आपको याद रहना चाहिए, लेकिन आप मेरी कार्य पद्धति को नहीं जानते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे याद रहना चाहिए। हो सकता है कि मैं 3-4-5 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस तैयार करके और सौंप देता हूं कि भाई आप इन्हें सैटरडे को डालते रहे, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि उन्होंने कौन सा स्पेशल ऑडियो गाइडेंस डाला। आप क्या कर रहे हैं, आपने जो लिखा कि पिछले सप्ताह आपका जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आया था, तो क्या जो की जगह आप टाइटल नहीं लिख सकते कि पिछले सप्ताह आपका इस विषय पर जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आया था, क्या नहीं लिखा जा सकता। और केवल इतना ही कह लिखने मात्र से पूरी स्पष्टता हो गई। अब मैं पिछले पूरी वो लिस्ट उठा करके नहीं देखूंगा कि पिछले सप्ताह का कौन सा स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा गया था, मैं ये तकलीफ नहीं करूंगा। तो आपका लिखा न लिखा, कहा अनकहा, सारा दोनों सब कुछ बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसी तरह से मैं तो डेली में ऐसे मेल पढ़ता हूं कि आपका परसों का जो लाइफ मैनेजमेंट था सर, वो बहुत अच्छा था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। परसों का लाइफ मैनेजमेंट, फिर आप कह सकते हैं कि आपको याद रहना चाहिए। सर ठीक है, मुझे याद रहना चाहिए, आपने अपने जो दायित्व है वो मुझे सौंप दिया, लेकिन मुझे याद रहना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ठीक है, मुझे याद रहता भी है ज्यादातर, लेकिन मैं यहां बात अपनी नहीं कर रहा मित्रों, बात मैं आपकी कर रहा हूं कि आपको कैसे अपने राइटिंग में बहुत ज्यादा स्पष्टता रखनी चाहिए। और याद रखिए कि जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, तब एक स्टेज आपकी आएगी, जब मान लीजिए कि एक फाइल चल रही है और फाइल में नीचे से कुछ लिख करके आ रहा है, तो नीचे वाला सबसे ज्यादा लिखेगा, उससे ऊपर वाला उसको थोड़ा छोटा करेगा, और फिर एक स्टेज पर आपसे कहा जाएगा कि आप इसका सेल्फ कंटेंट नोट बनाइए। सेल्फ कंटेंट नोट का मतलब है कि नीचे के अधिकारियों ने जो कुछ भी अब तक लिख करके इस फाइल में आपके पास भेजा है, अब उसको आप समराइज कीजिए, और इस तरह से समराइज कीजिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटने ना पाए। सेल्फ कंटेंट नोट जो अपने आप में संपूर्ण हो, तो आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो सेक्रेटरी हैं, जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं, वो फिर पूरी फाइल नीचे से नहीं पढ़ेंगे कि लोगों ने क्या क्या कहा, वो तो आपके ही नोट को पढ़ करके डिसीजन ले लेंगे। या कह लीजिए कि सेक्रेटरी नोट तैयार कर रहे हैं मिनिस्टर के लिए, तो वहां आपके लिखने में अगर जरा भी अस्पष्टता रह गई, जरा भी धुंधलापन रह गया, या सेक्रेटरी या मिनिस्टर को समझने के लिए फाइल के पीछे के नोटिंग को देखना पड़ गया, इसका मतलब है कि आपकी लिखावट में स्पष्टता का बुरी तरह से अभाव है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग शुरू कर देंगे और आगे चल करके फिर क्या करने लगेंगे, इसने कहा था, वह गया था, इसका उसका, इसने उसने, यहां वहां। उनको लगता है कि शुरू में तो मैंने बता दिया कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, अब उनका नाम क्यों लिखा जाए। अच्छी बात होगी कि इसका उसका यहां वहां की भाषा में बात की जाए, इसने कहा उसने कहा। स्पष्टता के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसने कहा उसने कहा की जगह आप सीधे नाम लिखिए ना, कि भाई इस नाम के व्यक्ति ने कहा, उसमें दिक्कत क्या है। क्योंकि सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है, पहली बार ही पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में वो नाम दर्ज न हो पाए, लेकिन अगर आप 4-5 बार नाम लिख देंगे तो फिर नाम दर्ज हो जाएगा। और फिर भले आप इसके उसका लिखिए, हालांकि कोशिश यही करना चाहिए कि हम इसका उसका, यहां वहां और इसने उसने की भाषा का इस्तेमाल न करके बहुत स्पष्ट रूप से नाउन का इस्तेमाल करें, संज्ञा का इस्तेमाल करें, उसमें दिक्कत क्या है। आदत आपको डालनी है, और आदत के बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोगों के समय में तो पत्र लिखने का बहुत ज्यादा चलन था। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बीए फाइनल में था, तो मैं शहर आ गया था अंबिकापुर में, तो अखबार लेने लगा था। पहली बार जिंदगी में अखबार पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा था, तो उस समय हमारे यहां नवभारत अखबार आता था जो रायपुर से छपता था। अब लगता था यार कि हम भी इसमें कुछ लिखें, तो उस समय लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र लिखा जाता था, और उसको काफी जगह भी मिलती थी। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो संपादक के नाम पत्र लिखने से शुरुआत की थी। अब जब संपादक के नाम पत्र लिखना होता था, तो उस पर इतना सोचते थे, उसकी इतनी ड्राफ्ट करते थे, पहली बार लिखा नहीं मजा नहीं आया, फिर दूसरी बार लिखा मजा नहीं आया, तीसरी बार हाँ अब ठीक है, इसके बाद उसको भेजते थे और जब पत्र छपते थे तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी जैसे कि हम कोई बड़े महान लेखक बन गए हो, जो भी आप कह लीजिए इसे अच्छा बुरा, लेकिन खुशी का एहसास तो होता था कि ठीक है हमने मेहनत की और उसका फल मिला। और मुझे याद आ रहा है कि जितने भी पत्र संपादक के नाम भेजे थे शायद ही कोई पत्र होगा जो न छपा हो, शत प्रतिशत पत्र छपते थे। दूसरे को भी अगर लेटर लिखना है तो बकायदे दिमाग में पहले स्ट्रक्चर तैयार करते थे, क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, इसके बाद फिर कार्ड और अंतर्देशी पर लिखते थे। हम लोग मित्रों ये अभ्यास करते थे और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अगर थोड़ा सा ऐसा अभ्यास करने लगेंगे तो पाएंगे कि आपके विचारों में जो स्पष्टता होनी चाहिए वह भाषा में उतर कर आ गई है। और डेफिनेटली अगर सामने पढ़ने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपके या आपके अनुपस्थिति में आपके पीछे से पढ़ रहा है, मान करके चलिए कि अगर आपके विचार स्पष्ट हैं तो वह उसे पढ़ना चाहेगा और उस पर एक्शन भी लेना चाहेगा। तो दोस्तों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और बातें करेंगे। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।